इंग्लैंड में पुनर्जागरण, इंग्लैंड में पुनर्जागरण की गति उतनी तीव्र नहीं थी। हालांकि 14वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक कुछ परिवर्तन अवश्य आने शुरू हो गए थे, लेकिन इन परिवर्तनों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। प्रसिद्ध आंग्ल कवि जोफ्री चासर 1340 से 1400 ने इटली और फ्रांस दोनों देशों का भ्रमण किया था, और उन पर फ्रांसीसी कवि गिलेम द मैकेट 1300 से 1377 और इटली के दांते तथा बुकाचियो का काफ़ी प्रभाव देखा जा सकता है। बुकाचियो के प्रति उनका ऋण कहीं ज़्यादा है, जैसा कि उनकी काव्य कृतियों ट्रायलस एंड क्रेसिडा तथा कैंटरबरी टेल्स में देखा जा सकता है। परंतु बुकाचियो जहां केवल विवरण को अधिक महत्व देते थे, वहां चासर की लंबी कविताओं में चरित्र चित्रण और भावाभिव्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। लेकिन इंग्लैंड में हमेशा बाहरी प्रभाव पड़ते रहे। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि जहाँ तक इंग्लैंड का प्रश्न है, उसके इटली के साथ संबंध काफ़ी दृढ़ थे। जिस समय चासर अपनी कविताएं रच रहे थे, इतालवियों के विभिन्न वर्ग, पादरी, कलाकार, व्यापारी और राजपुरुष निरंतर इंग्लैंड आ जा रहे थे। 15वीं शताब्दी और इससे पूर्व विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित इतालवियों ने इंग्लैंड की यात्रा की। इनमें पादरी, कलाकार, व्यापारी व अभिजात वर्ग के लोग थे, जो कि अपने साथ पुनर्जागरण के आधार मूल्यों को लेकर आए। वारसेस्टर के बाद एक 5 बिशप इतालवी ही थे। हेनरी अष्टम के दरबार में इतालवी बुद्धिजीवियों को पूरी शक्ति थी, और अंत में इतालवी बैंकिंग परिवार बारदिस, पेरुजिस और फ्रेस्कोबाल्डिस इंग्लैंड में साहूकारी कर रहे थे। इन्हीं विभिन्न एजेंसियों के द्वारा पुनर्जागरण के आदर्शों एवं परंपराओं को निरंतर बल मिलता रहा। यह एक तथ्य है कि हेनरी सप्तम की मृत्यु के बाद ही इतालवीय प्रभाव कमजोर होना शुरू हुआ था। दरबारी कवि आंद्रे का असर तेजी से प्रभावहीन हो गया। 1511 ईस्वी में कारमोलिनो को लतानी सचिव के पद से हटा दिया गया तथा पोलिटोर वर्जिल, जिसे मूलतः इंग्लैंड का लैटिन इतिहास लिखने का काम सौंपा गया था, अंततः 1534 में जाकर ही अपनी कृति हिस्टोरिया एंग्लिका इंग्लैंड का इतिहास प्रकाशित करा पाए, और वह भी जेल की सजा भुगतने पर। इंग्लैंड के राजनीतिक अभिजात वर्ग के नए ज्ञान को फैलाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ऐसे दो व्यक्ति थे, ग्लोसेस्टर के ड्यूक हम्पी हेनरी पंचम के एक भाई जो ऑक्सफोर्ड से संबंधित थे, तथा अर्ल हाफ वाल्सेस्टर टोबी टिपटॉफ, जिनके राजनीतिक मूल्य या विचार अंग्रेजों की तरह बिल्कुल नहीं थे। 16वीं शताब्दी के पहले 25 वर्षों तक ऑक्सफोर्ड क्लासिक लेखकों के गंभीर अध्ययन के केंद्र के रूप में विकसित हो गया था। इस पुनरुत्थान के साथ अत्यंत प्रख्यात व्यक्ति संबंधित थे, थॉमस लिनासर 1460 से 1543, विलियम ग्रोसिन 1466 से 1519 और विलियम लेटिमर 1460 से 1543। ग्रोसिन ने लिखा तो बड़ा कम, पर मानवतावादी पंडित के प्रति उनके आलोचनात्मक विश्लेषण ने, वह चाहे उनके लेखन में हो या उनके भाषणों में, बुद्धिजीवियों की पूरी पीढ़ी को अत्यंत प्रभावित किया। इनमें से कुछ थे कोलेट लिनासर और सर थॉमस मूर। लिनासर की रुचि केवल लैटिन व्याकरण तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि बड़ी दिलचस्प बात यह कि उसके दायरे में औषध विज्ञान भी था। ग्रीक के एक महान विद्वान के रूप में लिनास का प्रमुख योगदान ग्रीक चिकित्सा शास्त्रियों के उनके अध्ययन में है। उन्होंने गालेन की अनेक लैटिन चिकित्सा शास्त्रीय कृतियों का परिश्रम पूर्वक अनुवाद किया। जान कोलेट 1466 से 1519 में जो कुछ समय तक इटली में अध्ययन भी करते रहे थे, प्लेटो और प्लाटिनस के जबरदस्त प्रशंसक थे। ऑक्सफोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान तथा एक नव प्लेटोनिक उभार के अंतर्गत कोलेट ने पांडित्यवाद के प्रति एक आम और रुचि विकसित की, तथा एक समय तो उन्होंने थॉमस एक्विनास तक की आलोचना कर डाली, जो आमतौर पर मानवतावादियों को स्वीकार्य रहे हैं। अंग्रेजी पुनर्जागरण आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि साधारण व्यक्ति पेशे से विधिवादी ही इस दौर के अंग्रेज मानवतावादियों के लिए सबसे आकर्षणकारी व्यक्तित्व रहा है। सर थॉमस मूर 1478 से 1535 एक स्वयं शिक्षित व्यक्ति ही था, जिसे अपने समकालीनों की तरह कभी भी शिक्षा नहीं मिली थी, और इस दृष्टि से अनेक संदर्भों में उनकी कृतियां अद्वितीय हैं। सर्वोपरि मूर अपने समय के दौरान अंग्रेजी गद्य का असाधारण कलाकार था, और शायद वह इतना ही श्रेष्ठ लैटिन में भी था। मूर ने ग्रीक भाषा लिनासर से सीखी थी, और वह ग्रीक के अध्ययन का उस दौर में भी जबरदस्त समर्थक था, जबकि ऑक्सफोर्ड के कुछ रूढ़िवादी हलकों से इसका कड़ा विरोध किया जाता रहा। किया जाता था। थॉमस मूर की श्रेष्ठ कृति यूटोपिया थी, जिसमें तत्कालीन समाज की राजनीतिक और सामाजिक बुराइयों की आलोचना की गई है। यह कृति इस प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से इतनी सृजनात्मक एवं मौलिक है कि तभी से विभिन्न आलोचकों के बीच इसके मूल अर्थ को लेकर व्यापक मतभेद रहे। कुछ की दृष्टि में यह समाज की बुर्जुआजी दृष्टि से की गई आलोचना को प्रतिबिंबित करती है, जबकि कुछ अन्य इसे समाजवाद की अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति मान बताते हैं। यदि इस विवाद में न पड़ा जाए तो कहा जा सकता है कि मूर एक सच्चे और पवित्र ईसाई थे और जीवन भर वे ऐसे ही रहे। उन्होंने ईश्वर, चर्च और धर्म के आगे कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। वास्तविकता यह है कि उसके द्वारा लगातार राजा को चर्च का धार्मिक नेता मानने से इनकार करने का ही यह परिणाम था कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रतीक रूप में संभवतः मूर एक ऐसे ध्येय के लिए शहीद हो गए जिसके राजनीतिक केंद्रीकरण राष्ट्रवाद और यूरोपीय सत्ता राजनीति के द्वारा बराबर अवहेलना की जा रही थी। सन 1534 में मूर पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया, जबकि उसने राजा को ईसाई विश्व का धार्मिक अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया था। 1535 में उन्हें प्राणदंड देने के बाद उनका कटा हुआ सिर आम लोगों को देखने के लिए लंदन ब्रिज पर लटका दिया गया ताकि लोग अपना निर्णय ले सके। संभवतः मूर उस मुद्दे को लेकर शहीद हो गए जिसने 16वीं शताब्दी के यूरोप में शक्ति राजनीति का प्रारंभ किया।